Virya Samvido Bhavanti Het Karna Rasayana Katha Tad Joshana Aspavarga Vartmani Shraddha Rati Bhakti Anukamashati Satam prasanga mama virya samvido Vanti het karna sana katha Tajjosana as uparga vartmani Shraddha natir bhaktir anukramashati Satam prasangam mama virya samvido Bhavanti het karna rasayana kataha Tajya shadada asva parga virtvatmani Shraddha ratir bhaktir anukramashati Satam prasangam mama virya samvido Vanti het karna rasayana katha Tajjo sanadas vaparga vartmani Shraddha ratir bhaktir anukramashati
You want to try? Try, don't worry. Anybody else? Otherwise, we'll go to the board meeting. Anyone else? Will you try? Okay. Satam, or pure devotees. Prasangat, through the association. Mama, my. Virya, wonderful activities. Samvida, by discussion of. Bhavanti, become. Head, to the heart. Karna, to the ear. Rasayana, pleasing. Katha, the stories. Tad, of that. Joshana, by cultivation. Ashu, quickly. Aparga, of liberation. Vartmani, on the path. Shraddha, firm faith. Rati, attraction. Bhakti, devotion. Anukramashati, will follow in order. In translation, in the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and therefore he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begins. You want to repeat after me? In the association of pure devotees, there is a discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and therefore he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Purport or explanation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The process of advancing Krishna consciousness and devotional service is described here. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. Without such association, one cannot make advancement. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees. Without the association of devotees, one cannot understand the activities of the Lord. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the Absolute Truth. Because they do not associate with devotees, they cannot understand that the Absolute Truth can be a person and have personal activities. Om Ajnanta Minandasya Jnananjana Shalakya Chakshur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. So what should I speak, in English or Hindi? Hindi mein bolein ya Angreji mein? Hindi mein? Okay. So somebody should translate for... Where is Govinda Prem? Okay, where is Govinda Prem? He'll translate for you. Where is he? Is he here? Where is Govinda Prem? Where is Govinda Prem? He's coming. Govinda Prem. तो यहाँ भगवान कपिला देव उपदेश दे रहे हैं. तीसरे स्कंद में आप पढ़ते हो कि भगवान प्रकट हुए थे कपिला देव जी के रूप में. गोविंद प्रेम है, क्लास मिस कर रहा है. गोविंद प्रेम कैन यू ट्रांसलेट फॉर हिम, सिट इन वन कॉर्नर सो ही विल ट्रांसलेट इन स्वाहिली. तो इस तीसरे स्कंद में हमें भगवान कपिला देव की शिक्षा प्राप्त होती है. और कपिला देव जी कौन है? स्वयं भगवान है. यदा यदा ही धर्म से ज्ञानी भवति भारत अभी धर्म से तदात्मनम सृजामि हम. भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में कहा है कि अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ. किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए. इतिहास में दो कपिला देव प्रकट हुए हैं. एक है असली कपिला देव जो देवहूति माता के पुत्र थे और कदामा मुनि के, एक हैं ढोंगी कपिला देव. इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी ने कपिला देव जी की शिक्षा का ग्रंथ प्रकाशित किया, उन्होंने स्पष्ट लिखा टीचिंग द लॉर्ड कपिला द सन ऑफ देवहूति, देवहूति का पुत्र कपिला देव की शिक्षा. तो कपिला देव की माता का नाम था देवहूति, पिता का नाम था कदामा मुनि. कदामा मुनि बहुत ही ऊंची कोटि के योगी थे. 10,000 वर्षों के लिए उन्होंने निरंतर भगवान का चिंतन किया था और उनके पास ऐसी योगिक सिद्धियाँ थी कि उन्होंने एक जहाज में एक पूरे पृथ्वी को, पर्वत को, सागर को प्रकट कर दिया था एक जहाज में. जैसे आप जहाज में यात्रा करते हो तो जहाज में तो आप फोटोज देखते हो या सिनेमा देखते हो गए पहाड़ों के और सागर के, पर उन्होंने असली पहाड़ों को प्रकट कर दिया था. ये थी उनकी योगिक सिद्धि. पर जब उनके बेटे बड़े हुए तो घर छोड़कर वो वापस चले गए भगवान का चिंतन करने के लिए. देवहूति जो उनकी माता थी, उन्हें पता था मेरा बेटा जो है भगवान का अवतार है. ये उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया था. जब कपिला देव भगवान माता के घर में थे तो कपिला देव ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपके घर में स्वयं भगवान है. तो माता को पता था शुरू से ही कि मेरा बेटा जो है स्वयं भगवान है. जब भगवान प्रकट होते हैं अपने ही भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं. ये जो असुर हैं, आप पढ़ते हो भगवान की कृष्ण लीला, भगवान ने इस असुर का वध कर दिया, इस असुर का वध कर दिया. ये असुर भी जो हैं भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान की लीला को ज़्यादा मधुर बनाने के लिए असुर का रूप में प्रकट होते हैं. जैसे कि पिछले हफ्ते 13 तारीख को आपने क्या नरसिंह चतुर्दशी मनाई थी, और जिसमें आपने सुना किस प्रकार भगवान नरसिंहदेव जी ने हिरण्यकशिपु का वध किया. पर हिरण्यकशिपु वैसे तो हम उन्हें असुर राक्षस के रूप में मानते हैं, पर वो थे भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त. तो देवहूति भी भगवान की माता हैं. तो देवहूति ने अपने बेटे से एक प्रश्न पूछा. आप शास्त्रों में देखते हो प्रश्न उत्तर, जैसे भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से अनेक प्रश्न पूछे और भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया. इसी प्रकार भागवत में आप देखते हो कि परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे और शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया. तो यहाँ आप देख रहे हो, अरे वो यहाँ देख रहे हो कि देवहूति माता भगवान से अनेक प्रश्न पूछ रही है. और माँ उनके बेटे प्रसन्न हुए थे इन प्रश्नों को सुनकर. जैसे आप भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हो कि परीक्षित महाराज जब उन्हें श्राप दिया था कि 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने उस समय के उपस्थित संतों को निमंत्रण देकर पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए. और सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी के पुत्र थे, बड़े प्रसन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा इस प्रश्न का जो उत्तर है उसके द्वारा पूरा विश्व लाभ उठाएगा. जैसे कि जो गीता का संदेश है भगवान ने दिया अर्जुन को, पर वो संदेश पूरे मानव समाज के लिए है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए है. तो देवहूति ने अपने बेटे से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो. जैसे कि हम भौतिक नेत्रों से देख पाते हैं, उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक नेत्रों से देखना चाहिए. आध्यात्मिक नेत्र का एक और नाम है शास्त्र चक्षु. शास्त्र के आधार पर हम देखते हैं क्या ठीक है क्या गलत है. जैसे कि किसी देश में आप जानना चाहो ये कार्य ठीक है या नहीं, आप देखते हो पहले सरकार के नियम क्या हैं, नियम के अनुसार है या नियम के विपरीत है. तो उसी प्रकार हमें देखना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से ये ठीक है या गलत है, क्योंकि शास्त्र में कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि शास्त्र में क्या है, स्वयं भगवान की वाणी. तो देवहूति ने बेटे से कहा तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, तुम वो खिलाड़ी हो जो कि इस पेड़ को काट सकती है. कौन सा पेड़? आकर्षण का पेड़. तुम मुझे शिक्षा दो, ये शिक्षा दो कि किस प्रकार मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है. ये है असली प्रश्न. आज समाज में आप देखते हो सब व्यस्त हैं धन कमाने की योजना में, इंद्रिय तृप्ति की योजना में, पर इन कार्यों के द्वारा असली संतुष्टता प्राप्त नहीं होगी. असली संतुष्टता चाहिए तो हमें किसी प्रकार से भगवान के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए. तो देवहूति ने पूछा तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, मुझे ये शिक्षा दो कि ये जो भौतिक आसक्ति है इससे मैं कैसे मुक्त हो सकूं. तो भगवान कपिल देव माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं. भगवान कपिल देव ने कहा है वही आकर्षण जो हम भौतिकवादी व्यक्तियों के प्रति रखते हैं हमें साधुओं के प्रति रखना चाहिए. पर साधु किसे कहते हैं? हम सोचते हैं कोई भी व्यक्ति अपने वस्त्रों से हम पहचानते हैं, सैफरन कपड़े पहन लिए तो ये साधु है, महात्मा है. साधु के भी लक्षण होने चाहिए. जैसे अगर हम आपसे कहें ये डॉक्टर है तो उसके द्वारा ये माना जाता है MBBS है, MD की डिग्री है. तो उसी प्रकार साधु किसे कहते हैं, इस विषय पर भगवान कपिलदेव कहते हैं तितिक्षा करुणिका सूरदा सर्वदही नम अजित सत्व संता साधवा साधु भूषण. जो साधु है उसे अत्यंत सहनशील होना चाहिए. और भौतिक संसार में सुख दुख आदर अपमान हार जीत ये सब घटनाएं बीतते जाएंगे, पर साधु को सहनशील होना चाहिए. करुणिका दया की भावना होनी चाहिए उसमें. और जिस व्यक्ति के हृदय में दया की भावना है वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, इतना था कि एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता, और उसके मन में यही भाव रहता है कि हम सबका उद्धार करें। जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के भक्त प्रचार के कार्य में लगते हैं। क्यों इसलिए लगे हैं प्रचार के कार्य में? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि सारे बदजीव उनके धाम में लौटें। जिस प्रकार अगर बच्चे बेटा बच्चा घर छोड़कर बाहर चले जाता है तो माता पिता की यही इच्छा रहती है कि वह घर लौटे, उसी प्रकार परम भगवान की इच्छा है कि सारे बदजीव उनके धाम में लौटें। क्योंकि उन्हें पता है कि भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट। तो साधु में वो लोग घंटी नहीं बजाए, साधु में दया की भावना होनी चाहिए। सूरदा सर्वधैनम, सब जीवात्मा के प्रति मित्रता का भाव होता है। सूरदा सर्वधैनम, ये नहीं कि ये मित्र है ये शत्रु है। भौतिक समाज में हम क्या सोचते रहते हैं, ये मेरा बंधु है ये मेरा शत्रु है। प्रहलाद महाराज के पिता ने प्रहलाद के अध्यापकों को उपदेश दिया, मेरे बेटे को ये समझाओ कि विष्णु हमारा शत्रु है, और इसको राजनीतिक शिक्षा दो। राजनीतिक शिक्षा मतलब ये तुम्हारा मित्र है ये तुम्हारा शत्रु है। तो प्रहलाद ने कहा, मेरे को ये शिक्षा नहीं चाहिए, सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। जो भगवान के जो भक्त हैं वो सबके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, इतना तक कि वो एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहते। वो मानते हैं कि चींटी भी भगवान की औलाद है, इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है जीने का। सूरदास सर्वधैनम अजता सतव संता, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखते। भौतिक संसार में हम ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं, पर जो साधु है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखता। और साधवा वो कार्य करता है शास्त्र पर आधारित। जैसे कि इस संस्था में जो भी उपदेश आपको दिया जाता है वो 100% शास्त्र के आधार पर है, 100% सपोर्टेड इन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र में है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 एव गति होता। हरे का नाम लो, हरे का नाम लो, हरे का नाम लो, यही एक साधु। तो साधवा का अर्थ है शास्त्र पर आधारित। वो शंता, शंता का क्या अर्थ है? शंता का अर्थ है शांति। तो जो साधु है उसका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। साधु को हरे बहु, साधु का जो आचरण है शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के पास आए, क्योंकि हरिदास ठाकुर का जन्म भी मुसलमान खानदान में हुआ था, उन्हें जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करने की सुविधा नहीं थी। तो सनातन गोस्वामी रोज उन्हें मिलने आते थे। सनातन गोस्वामी ने कहा, कई लोग प्रचार करते हैं पर उनका आचार नहीं, कई आचार हैं पर प्रचार नहीं, पर आप में ये दोनों ही गुण हैं। दूसरे शब्दों में हमें अपने व्यवहार से धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये नहीं कि हम कहें कुछ और करें कुछ। जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये नहीं कि मुंह में राम राम है और मन है किसी और स्थान में। और प्रभुपाद जी कहते थे स्पष्ट कि इस्कॉन संस्था के सब भक्तों को बिल्कुल एग्जाम्पलरी होना चाहिए व्यवहार में, बिल्कुल एग्जाम्पलरी शास्त्र पर आधारित व्यवहार होना चाहिए। तो माता ने पूछा, बेटा ये शिक्षा दो कि किस प्रकार मैं बौद्धिक संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। देवहूति भगवान की माता थी, तो ये संभव नहीं कि वो किसी प्रकार से अज्ञानता में आए। अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं, तो ये संभव नहीं कि अर्जुन को ये नहीं समझ आए उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, है कि नहीं। परीक्षित महाराज, भगवान ने उनका उद्धार किया था, सुरक्षा की थी, जब वो माता के घर में थे, जब वो उत्तरा माता के घर में थे, तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था इस उद्देश्य के साथ कि जो बच्चा है उनके घर में उसका वध हो जाए। भगवान ने विस्तार करके उनकी सुरक्षा की। तो ये संभव नहीं कि यही परीक्षित महाराज जब इस ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया, उन्होंने श्राप स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान के जो सनातन भक्त हैं ऐसी स्थिति में आते हैं और उनकी इच्छा क्या रहती है, इस बहाने भगवान ने उपदेश दे। अर्जुन ने कहा मुझे ये संबंध नहीं आ रहा क्या मेरा कर्तव्य होना चाहिए, जिसके पश्चात भगवान ने गीता का संदेश देना आरंभ किया। परीक्षित महाराज को ब्राह्मण लड़के ने श्राप दी थी, जिसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें उपदेश दिया। उसी प्रकार देवहूति भगवान की माता हैं, ये संभव ही नहीं कि वो किसी प्रकार से अज्ञानता में आए, पर भगवान ने उन्हें उस स्थिति में डाला इसलिए कि कपिले देव भगवान की शिक्षा हम सबको प्राप्त हो सके। तो भगवान ने कहा है वही आकर्षण जो हम भौतिकवादी व्यक्तियों के प्रति रखते हैं, वही आकर्षण हमें साधुओं के प्रति रखना चाहिए। और आगे जाकर उन्होंने साधुओं के लक्षणों का वर्णन किया। आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है, आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि भक्तों की संगत में भगवान की लीलाओं कार्यकलापों की चर्चा होती है। भक्तों के संग में हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए। कृष्ण कथा मतलब भगवान की कथा, भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के अनेक गुणों का गुणगान। भगवान ने हमें एक जीभ दी है, दो कान दिए हैं, अनेक इंद्रियां दी हैं, हम चाहें तो इनका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं और चाहें तो इनका दुरुपयोग भी हम कर सकते हैं, दोनों संभव है। शास्त्र में कहा गया है कि हम जीभ के द्वारा जब हम भौतिक चर्चा करते हैं इसको क्या कहते हैं, प्रजल्पा। प्रजल्पा का अर्थ है वो चर्चा जिसका भगवान से कुछ संबंध नहीं हो। और कृष्ण कथा का अर्थ है वो कथा जिसकी भगवान से संबंध है। तो जीभ के द्वारा अगर हम भौतिक चीज़ों की चर्चा करेंगे, फिल्मी गाने गाएंगे और भौतिक चर्चा करेंगे, तो यही जीव आपके दुश्मन बन जाएगी। पर अगर आप जीव के द्वारा भगवान का गुणगान करो तो इसका अलग लाभ है। यहाँ कपिला देव भगवान कह रहे हैं शुद्ध भक्तों की संगत में रहकर भगवान की लीलाओं का ज्ञान बढ़ता है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी साधु संगत पर बल दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी आज से 500 साल पूर्व विश्व के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। 500 साल पूर्व जबकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, विश्व का सबसे धनी स्थान था भारत का। उन दिन में अमेरिका था ही नहीं, अमेरिका भी केवल 300 साल पुराना है। और भारत का सबसे धनी राज्य था बंगाल का राज्य, और उस राज्य के शासन कौन कर रहे थे, रूपा सनातन गोस्वामी दो भाई। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा दी और कहा इन भक्ति की अनेक विधियों में पांच अंग सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला अंग था, क्या था पहला? साधु संगत। साधु संगत में रहो, जैसे वो कहते हैं इंग्लिश में, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप व्यक्ति को पहचानते हो उसकी संगत के द्वारा। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे भाव अनुकूल होंगे, बुरी संगत में रहोगे तो बुरे भाव। ये सच है या झूठ? जब माँ बाप देखते हैं कि बच्चे बुरी संगत में जा रहे हैं तो घबरा जाते हैं। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज के श्लोक में भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगत में रहकर आप भगवान की लीलाओं उपदेश इत्यादि को सुनोगे। तो जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, हमें भौतिक चर्चा करने के बजाय क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक चर्चा, कृष्ण कथा की चर्चा करनी चाहिए। कृष्ण कथा की चर्चा करोगे तो उस कथा के माध्यम से आपका अशुद्ध हृदय मन इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगे। जैसे आप दवाई लेते हो बीमारी को दूर करने के लिए, ये है इस कलयुग की औषधि, भगवान के नामों को सुनना। तो भगवान के भक्तों की संगत में रहोगे तो आपको वो उपदेश मिलेगा जो कि हृदय को और कानों को संतुष्ट करेगा। भौतिक प्रसाद आप कैसे स्वीकार करते हो? मुंह के द्वारा, है ना? हाँ, पर आध्यात्मिक प्रसाद हम ग्रहण करते हैं कानों के द्वारा। कानों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है आध्यात्मिक परिवर्तन में। कान का और जीभ का संबंध है, इसलिए आप देखते हो अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो गूंगा भी है, गूंगा है तो बहरा भी है। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखेगा जो गूंगा है और बहरा नहीं, या बहरा है और गूंगा नहीं। तो ये है प्रकृति का नियम। तो आप साधु संग में रहोगे तो आपको वो ज्ञान मिलेगा जिसके पालन से आप जीवन को सफल बना सकते हो। तो भक्तों के संग में रहोगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और इस ज्ञान के पालन से आपको जो हृदय है वो संतुष्ट रहेगा। हम सोचते हैं किसी प्रकार से हम धन कमा लें, संपत्ति बढ़ा लें तो आप संतुष्ट हो गए, तो ये गलत है। जब तक आप मन और इंद्रियों को वश में नहीं करो, जब तक आप संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकोगे। कल रात को हमने आपको भगवान वामन देव का कथक की कथा सुनाई थी। वामन देव जी जब बाली महाराज की यज्ञशाला में गए, बाली महाराज बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आप आ गए हो इस शुभ अवसर पर मेरे खानदान को पवित्र बनाने के लिए, आप मांगो मेरे से क्या चाहिए। जब आपकी कई बार हम जाते हैं लोगों को मिलने, लोग पूछते हैं स्वामी जी क्या हम सेवा कर सकते हैं बताइए। तो उसी प्रकार बाली महाराज ने पूछा क्या सेवा हम कर सकते हैं। वामन देव जी ने कहा, अगर आपको सेवा करना चाहते हो तो मुझे उतना स्थान दो जहाँ कि मैं 3 कदम अपने पैरों का रख सकूं। अभी जापान में टोक्यो में ज़मीन सबसे महंगी है विश्व में, वो 3 कदम ज़मीन कोई खरीदता है? कोई नहीं खरीदता। तो मुझे उतना स्थान दो जहाँ मैं 3 कदम रख सकूँ। बाली महाराज ने कहा, इतने बड़े धनी व्यक्ति के पास आकर इतनी छोटी भीख मांग रहे हो, मैं तो मेरे पूरा ब्रह्मांड दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू अ होल प्लैनेट, ये क्या 3 कदम रखने का स्थान। तो वामन देव जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, वन यू कैन नॉट कंट्रोल इज माइंड एंड सेंसेस, इवन इफ यू गिव द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड, he will not be satisfied. And if somebody can control his mind and senses, he'll be satisfied in all circumstances. So Vamandev ji ne kaha, Vali Maharaj keh rahe the, mango mere se aur mango. Dhani vyakti ke paas jaakar chawal ke daane thodi maante hain. So Vamandev ji ne kaha, jis vyakti ne man aur indriyon ko vash mein nahi rakha, usse aap sare vishwa ka dhan doge to bhi वो निराश रहेगा. और जिसने मन और इंद्रियों को वश में किया हो वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा. ये सच है या झूठ? आप देखते हो अनेक धनी व्यक्ति रोज ही नया कारखाना खोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जितने कारखाने हैं वो बहुत कम हैं और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. पर लालच की कोई सीमा है? लालच की कोई सीमा नहीं. तो भक्तों के संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का उपदेश मिलेगा. भक्तों के संग में रहोगे तो शास्त्रों के संदेश प्राप्त होगा. ये है भक्तों का लक्षण. भक्तों को कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए, हरि नाम में रुचि लेनी चाहिए. आगे इस ज्ञान के पालन से ये जो बौद्धिक आसक्ति है उससे हम बच सकते हैं और इसके माध्यम से असली भक्ति शुरू होती है. दूसरे शब्दों में अगर हम भक्तों की संग में रहेंगे तो हमें पूरा ज्ञान भी मिलेगा. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा पांच अंगों में सबसे पहला अंग क्या है? साधु संग. दूसरा क्या है? दूसरा है नामा कीर्तन. साधु संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा सुनोगे, साधु संग में रहोगे तो शास्त्रों की महिमा सुनोगे. और अगर अभक्तों की संगत में रहोगे तो वो क्या कहेंगे? हरि नाम क्या है आवश्यकता? सारी दुनिया इंद्र तृप्ति करिए, तुम भी करो, जब बूढ़े हो गए जब ले कर लेना हरि नाम. एक समय हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद अमेरिका में एक अमेरिकन भक्त को संन्यास दे रहे थे. हमारे वैष्णव संप्रदाय में संन्यास का अर्थ है स्त्री और गृह उभार के कार्य से कोई संबंध नहीं. तो उस सभा कार्यक्रम में एक इंडियन जर्नलिस्ट भी था जो 30 साल का होगा. तो वो जर्नलिस्ट ने प्रभुपाद जी से कहा, स्वामी जी हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि संन्यास बूढ़ों को देना चाहिए, आप इतने जवान लड़के को 24 साल के लड़के को संन्यास दे रहे हो. तो उसने कहा ये संन्यास तो बूढ़ों को देना चाहिए. तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे विचार से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड, बूढ़े का क्या व्यक्ति क्या? तो उसने कहा बूढ़े का अर्थ है जो मृत्यु के निकट हो, वन हु इज नियर टू डेथ. तो प्रभुपाद जी की उम्र थी लगभग 75 साल, 75, और ये जो भारतीय जर्नलिस्ट था उसकी आयु थी कोई 30 साल. तो प्रभुपाद जी ने जब पूछा तुम्हारे विचार से बूढ़े का क्या अर्थ, उसने कहा मृत्यु के निकट. तो प्रभुपाद ने पूछा तुम क्या मुझे गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे से पहले नहीं होगी? वो था प्रभुपाद की आधी उम्र का. उसने कहा नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता. फिर प्रभुपाद ने कहा देन यू आर ऑल्सो ओल्ड, तुम भी बूढ़े हो. क्योंकि बूढ़े का अर्थ है जो मृत्यु के निकट, और हम सब मृत्यु के निकट हैं. चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का हो. हमारे कई बड़े विज्ञानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर भक्त हैं अमेरिका में, इंडिया में. तो वो मुझे कहते हैं कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें बूढ़ों की बीमारी है. कई बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें वो बीमारी है जो 50 साल, 60 साल, 70 साल की आयु में लोगों को पहले होती थी. तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम कहते हो कि तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, पर हम सब मृत्यु के निकट हैं, तो हम सब बूढ़े हैं. तो शास्त्रों की दृष्टि से हम सब बूढ़े हैं, इसलिए शास्त्रों का निर्णय है कि हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. चाणक्य पंडित जी ने कहा है आयुष कशाना एक पीना दबाया स्वर्ण करोती। अगर आप एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमें हर पल का ध्यान से उपयोग करना चाहिए। विद द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन बट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज रिड्यूस्ड। रोज सुबह आप सूर्य का दर्शन करते हो तो शाम को सूर्य डूबता है। आपने कभी ये सोचा है कि इसके द्वारा आपको एक संदेश मिल रहा है कि आपके जीवन में एक दिन कम बच गया है? कोई सोचता है ऐसे? आप सोचते हो ऐसे? सच बोलिए, कोई नहीं सोचता है। आप सोचते हो पटेल जी? कोई नहीं सोचता कि मेरे जिंदगी में आज एक दिन कम बच गया है। हम तो यही सोचते हैं, गारंटेड 80-90 साल से पहले हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है छोटी आयु से ही आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि भक्तों के संग में रहोगे तो आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। आप जब इस शुद्ध ज्ञान का उपयोग करोगे तो इसके माध्यम से हृदय को संतुष्टता मिलेगी, कानों को संतुष्टता मिलेगी और आप असली आनंद अनुभव कर सकोगे। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, न ते विदुम स्वर्त गते में वैष्णव। लोग आज ये नहीं जानते कि असली सुख आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता। भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, क्षत्रिय होते हुए तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम इस युद्ध में लड़ो। पर लड़ो किस लिए? मेरी खुशी के लिए, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए। तो ये है हमारा सिद्धांत। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा तुम कुछ करो मत, पर करो करो मेरी खुशी के लिए। यत करोषि यत जिसनासि यत जरोषि ददासि यत यत तपस्वसि कौन्तेय तत् कृष्व अर्पणम्। जो भी तुम करो, दान दो, मेरे लिए करो। तो देवहूति के प्रश्नों के का उत्तर भगवान कपिला देव दे रहे हैं। और भगवान कपिला देव बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने माता द्वारा ये प्रश्न सुना, क्या मेरी भौतिक आसक्ति को काटो, ये शिक्षा दो कैसे मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पांच विधियों का वर्णन किया। पहली विधि क्या थी? साधु संग। दूसरा क्या था? हरि नाम कीर्तन, हरि नाम का उच्चारण। तीसरा था भगवत श्रवणम, श्रीमद् भगवतम सुनो। तो इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में रोज सुबह भगवत का अध्ययन किया जाता है। भगवत है भगवान की वाणी, सबसे उत्तम ग्रंथ। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, अगर कोई नहीं है प्रचार के लिए तो भी दो दीवारों को प्रचार करो, पर भगवत का क्लास जरूर सुनना चाहिए। भगवत का क्लास हमें सुनना चाहिए। और प्रॉपर जी ने खास करके कहा, जो मंदिर में रहते हैं उन्हें भगवतम क्लास में जरूर आना चाहिए। और भगवतम के विषय में क्या कहा गया है? नस्त प्रेश बद्रेश नित्यम भगवत सेवया, भगवत युद्ध श्लोक है, भक्ति भावती रह सकी। अगर हम ध्यान से आध्यात्मिक दवाई आप स्वीकार करते हो कानों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा नहीं, तो जब आप ध्यान से भगवतम को सुनोगे, इफ यू अटेंटिवली हियर द श्रीमद् भगवतम, ऑल दैट इज इनर स्पेसेस इन द हार्ट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड। अगर आप ध्यान से भगवतम को सुनोगे तो जो भौतिक आसक्ति है वो खुद ही खुद दूर हो जाएगी और भक्ति की भावना बढ़ेगी। तो भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि साधु संग में रहो, साधु की शिक्षा द्वारा आप भक्ति योग में आना जुड़ोगे। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 40 रुपए के साथ 70 साल की आयु में, पर उन्होंने प्रचार किया, प्रचार के माध्यम से अनेक व्यक्ति जुड़े, उन्होंने आगे प्रचार किया और इस प्रकार ये आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में फैल गई। तो उसी प्रकार हमें गंभीरता के साथ भगवान की वाणी को स्वीकार करना चाहिए, ये मानते हुए कि भगवान की वाणी में कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। और अगर हम सदा भक्तों की संगत में रहेंगे तो ये प्रेरणा भी प्राप्त होगी कि हमें हरि नाम की शरण लेनी चाहिए। ये ज्ञान है शास्त्र में, शास्त्र में कहा गया है हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्तेव नस्तेव भगति अन्यथा हरि का नाम। तो आप सब भक्तों से निवेदन है इस श्लोक के संदेश का पालन कीजिए, जहाँ भी रहो भक्तों की संगत में रहो, हरि नाम का उच्चारण करो, भगवत का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो और दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने का प्रयास करो, जो कि संभव हो सकता है केवल भगवान के संदेश के प्रचार से। भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो हम सबको उत्साहित होते हुए भक्ति को स्वीकार करना चाहें, भगवान के संदेश को आगे पहुंचाना चाहिए। हरे कृष्णा। समय का थोड़ा अभाव है क्योंकि आज कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, एनी क्वेश्चंस? यस, नाउ यू कैन कम क्लोजर, इट्स लिटल हार्ड टू हियर फ्रॉम अ डिस्टेंस। Yes, what's your question? Yes. Pure devotees means one who is representing the philosophy as it is purely. Of course, everyone is not a pure devotee. But the books, for example, are presented by pure devotees, and they are devotees who are representing the philosophy purely, even if they are not completely pure, but they are giving you the truthful message. Chant Hare Krishna, surrender to Krishna, read the Gita, read the Bhagavatam. So if you follow this process, then you will definitely make spiritual advancement. But if you can associate with those who are fully surrendered, that's also very auspicious. Very auspicious. Okay? Yes. You'll have to speak a little louder, it's a little hard. हाँ, माला के बिगर भी कर सकते हो। माला का लाभ ये है, एक तो माला द्वारा आप गिनती रख रहे हो कितनी माला हम कर रहे हैं। जैसे हम भक्तों से कहते हैं 16 माला का जाप करो, तो अगर आप ये 16 माला गिनना चाहो तो माला की आवश्यकता है। दूसरा, माला पर जाप करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ये एक बड़ा एंशियंट प्रमाणिक तरीका है माला का जाप करना। क्रिश्चियन लोग रोजरी करते हैं, आपने देखा है, मुसलमान लोग भी बीच पर जाप करते हैं। ये बड़ा प्राचीन तरीका है संतों का। पर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू चैंट। अगर माला का जाप, समझो आप दफ्तर जा रहे हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, और आप माला में जाप नहीं कर सकते हैं, फिर आप जबानी भी कर सकते हो। Any more questions? Yes, sir. हम लोग इंडिया में आदिवासी इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं। हम भी हमारे भक्तों को भेज रहे हैं गांवों में सब जगह। नहीं, भाषा हिंदी बोल के मराठी बोल के, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, नहीं वो लोग सादी भाषा समझते हैं। हाँ नहीं, हमारे कई भक्त प्रचार कर रहे हैं आदिवासी लोगों को। यस स्पीक लाउडर। But he's giving a pure message.
So let's say I'm a materialist, and then someone gives me a pure message, it's not following. So when I start following, and then sometimes you experience it,
yes, it's a very good, it's a very good question. The point is, if I'm a devotee in the temple and I'm preaching something, I should also practice what I'm preaching. But let's say someone's giving us a pure message, but he's not purely practicing. That doesn't mean that I should say, okay, this guy's not following, so I'm also not going to follow. Just because one car has an accident, you don't wish that you also have an accident. So if someone is not being exemplary, we should not let that distract us from our real mission. You follow? Okay. So I'll stop here now. Thank you. Hare Krishna.